एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा साथी। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन खजाने में जिसकी चमक आप मानिए 2500 साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी है।
हाँ,
हम बात कर रहे हैं धम्मपद की। ये बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और पसंद किए जाने वाले ग्रंथों में से एक है।
सही कहा। और ऐसा नहीं है कि ये बस मतलब इतिहास की बात हो गई।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, इतनी तनाव भरी, उसमें धम्मपद की बातें एक तरह से सुकून देती हैं, रास्ता दिखाती हैं। ये मन को साधने और दुख से निकलने का एक, कह सकते हैं, प्रैक्टिकल गाइड जैसा है।
बिल्कुल, एक नक्शा। तो आज हम इसी धम्मपद पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं जिनसे हम इसके सबसे जरूरी और दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, जरूर।
तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को।
सबसे पहले शायद ये जानना जरूरी है कि ये ज्ञान, ये शिक्षाएं, ये आई कहाँ से? धम्मपद किसकी देन है?
हाँ, अच्छा सवाल है। ये शिक्षाएं हैं सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है।
बुद्ध।
आज से करीब 2500 साल पहले, मतलब लगभग 563 ईसा पूर्व, नेपाल में एक राजघराने में उनका जन्म हुआ था।
सोचिए जरा, एक राजकुमार।
हाँ, जिनके पास शायद दुनिया की सारी सुख सुविधाएं रही होंगी।
बिल्कुल।
लेकिन कमाल की बात यह है, और ये मुझे हमेशा फैसिनेट करती है, कि बुद्ध का जो अधिकार है, जो सम्मान है, वो किसी दिव्य शक्ति या सिर्फ किताबी ज्ञान की वजह से नहीं है।
सही, उनकी असली ताकत उनके अपने अनुभव से आती है ना?
कहते हैं 29 साल की उम्र में, जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मौत को करीब से देखा महल के बाहर, तो उनका मन बिल्कुल बदल गया।
एक बड़ा मोड़।
उन्हें समझ आ गया कि ये महल की दीवारें, ये इन असली दुखों को रोक नहीं सकती।
और फिर उन्होंने वो किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। राजपाट, ऐशो आराम, सब कुछ, सब छोड़कर वो निकल पड़े सच की तलाश में।
आसान नहीं रहा होगा ये।
बिल्कुल नहीं। सालों तक भटकते रहे, कठोर तपस्या की, शरीर को खूब कष्ट दिया। मतलब एक रास्ता उन्होंने ये आजमाया,
हाँ, एक्सट्रीम तपस्या का।
फिर दूसरा रास्ता तो था ही भोग विलास का, जो वो पहले जी रहे थे। पर उन्हें लगा कि ये दोनों ही रास्ते मतलब एक्सट्रीम है, इनसे बात नहीं बनेगी। और फिर सालों की खोज के बाद करीब 35 की उम्र में बोध गया में एक पेड़ के नीचे, जिसे आप बोधि वृक्ष कहते हैं, वहां ध्यान लगाते हुए उन्हें वो मिला जिसे ज्ञान या बोधि कहते हैं।
एनलाइटनमेंट।
हाँ, उन्हें समझ आया कि असली रास्ता तो बीच का है, मध्यम मार्ग।
और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उनका ज्ञान सुना सुनाया नहीं है,
नहीं,
खुद अनुभव किया हुआ है। उन्होंने जो भी सिखाया, पहले उसे खुद जिया, और फिर अगले 45 साल तक, सोचिए 45 साल,
लंबा समय,
उन्होंने बिना रुके समाज के हर तबके के लोगों को, क्या राजा, क्या रंक, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, सबको अपनी शिक्षाएं दी।
और एक और मजेदार बात है इसमें,
क्या?
बुद्ध ने खुद अपने हाथ से कुछ लिखा नहीं।
अच्छा।
हाँ, ये जो धम्मपद है, ये असल में उनके सबसे जरूरी उपदेशों का एक संग्रह है, जिसे उनके शिष्यों ने उनकी मृत्यु के बाद इकट्ठा किया, संकलित किया।
तो ये डायरेक्ट उनके शब्द नहीं, पर उनके शिष्यों द्वारा याद रखे गए और लिखे गए शब्द हैं।
बिल्कुल, इसीलिए शायद ये इतना सीधा, इतना सच्चा और प्रैक्टिकल लगता है। ये किसी एक इंसान के गहरे अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है जो सबके काम आ सकता है।
तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। धम्मपद आखिर है किस बारे में? इसका निचोड़ क्या है? क्या कहता है ये?
अगर एक लाइन में कहना हो ना, तो शायद ये होगा, मन को साधकर और सही जीवन जीकर दुख से आजादी पाना।
मन को साधकर।
ये उस बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं, कि भाई असली टिकाऊ शांति और खुशी कैसे मिले, कहाँ मिले?
हाँ, ये तो $1,000,000 सवाल है। और बुद्ध का नजरिया इस पर, आपने कहा क्रांतिकारी है, कैसे?
क्रांतिकारी इसलिए कि वो कहते हैं, हमारा दुख जो है ना, वो बाहर की चीजों से उतना नहीं आता, जैसे पैसा नहीं है, या कोई छोड़कर चला गया, या नौकरी चली गई।
हाँ, हम तो अक्सर इन्हीं को दोष देते हैं।
बिल्कुल, लेकिन बुद्ध कहते हैं असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अपने मन की उलझनों में है। हमारी इच्छाएं, हमारा गुस्सा, हमारी जलन, चीजों से हमारा चिपकाओ, मोह, और सच को साफ साफ न देख पाने की हमारी अज्ञानता। असली जड़ ये है।
ओ, तो हम अपने दुख के लिए खुद जिम्मेदार हैं एक तरह से।
काफी हद तक धम्मापद का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि अगर हम अपने मन को ट्रेनिंग दें, उसे डिसिप्लिन में लाएं, अच्छे काम करें, मतलब नैतिक आचरण, और चीजों को साफ साफ समझने की जो समझ है जिसे प्रज्ञा कहते हैं वो विकसित करें।
अच्छा,
तो हम दुख और ये जो बार बार जन्म मरण का चक्कर है इससे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, इसी को निर्वाण कहा गया है।
निर्वाण,
हाँ,
ये उस आम सोच को सीधी चुनौती है।
हाँ,
जो कहती है कि खुशी बाहर से आएगी, ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, अच्छा पार्टनर।
हाँ,
धम्मपद कह रहा है नहीं, असली खजाना तो तुम्हारे अंदर ही है,
हाँ,
बस उसे खोजने और संभालने की जरूरत है।
बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ सन्यासियों या बहुत धार्मिक लोगों के लिए नहीं है।
नहीं, आम लोगों के लिए भी है।
हाँ, ये हर उस आम इंसान के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी ज्यादा शांति, थोड़ा सुकून, थोड़ी समझ चाहता है।
ये बहुत जरूरी बात है।
हाँ, इसकी खूबी यही है कि ये गहरी फिलॉसफी भी देता है और साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नुस्खे भी देता है। ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, बल्कि ऐसे सिद्धांत है जिन्हें हम अपने ऑफिस में, अपने रिश्तों में, अपने मन को संभालने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही ये हमें जीवन के बड़े मकसद की तरफ भी इशारा करता है।
अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं इसके। आपने बताया धम्मपद 26 हिस्सों में बटा है, वग्ग कहते हैं उन्हें।
हाँ, वग्ग, हर वग्ग एक खास विषय पर है।
जैसे पहला ही है यमक वग्ग, यानी जोड़ों का अध्याय। यहीं से वो बहुत मशहूर बात शुरू होती है कि हमारा मन ही सब चीजों का सरदार है ना?
हाँ बिल्कुल, वो शुरुआती लाइनें तो खजब की हैं।
जी।
कहते हैं अगर मन में बुरे ख्याल रखकर कुछ बोलोगे या करोगे तो दुख तुम्हारे पीछे ऐसे चलेगा जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे चलता है,
मतलब
चिपक कर पीछा नहीं छोड़ेगा।
ओ
और अगर मन साफ रखकर अच्छे इरादे से काम करोगे तो खुशी तुम्हारी परछाई की तरह साथ रहेगी, कभी पीछा नहीं छोड़ेगी।
वाह, कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है।
ये तो आज भी 100% सच लगती है।
बिल्कुल, और इसी पहले हिस्से में वो बात भी है ना, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती,
हाँ, ये तो बहुत फेमस है।
सिर्फ प्यार या बिना नफरत के भाव से ही खत्म होती है।
और बुद्ध कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, ये सनातन नियम है, दुनिया का पुराना नियम क्या है।
माइंडफुलनेस, ये शब्द तो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है।
हाँ, लेकिन देखिए इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बुद्ध ने इसे अमरता का रास्ता कहा है।
अमरता का रास्ता मतलब?
मतलब हर पल होश में रहना, जागरूक रहना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिना खोए हुए।
और इसका उल्टा?
इसका उल्टा है प्रमाद, यानी लापरवाही, गफलत में जीना। उसे मौत का रास्ता कहा गया है, आध्यात्मिक मौत।
बाप रे, तो सजगता इतनी जरूरी है। फिर है चित्तवग, यानी मन पर अध्याय। यहां मन की तुलना किससे की है?
बंदर से।
बंदर से क्यों?
क्योंकि जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी टिकता ही नहीं, वैसे ही हमारा मन भी है।
सही है।
कभी यहाँ कभी वहां, हजार जगह भटकता रहता है एक ही पल में। तो कहा है कि इस चंचल मन को साधना, इसे वश में करना, यही असली सुख और आजादी की चाबी है।
ये साधना ही तो सबसे मुश्किल काम है।
बिल्कुल, यही असली चुनौती है। फिर एक बहुत खूबसूरत अध्याय है पुपवग, यानी फूलों पर।
फूलों पर, इसमें क्या है?
इसमें जीवन की तुलना एक बगीचे से की है। जैसे एक माली होता है ना, वो सिर्फ अच्छे और खुशबूदार फूल चुनता है,
हाँ,
वैसी हमें भी जीवन से अच्छे गुण, अच्छी आदतें और ज्ञान के फूल चुनने चाहिए, और जो बुरी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो जहरीले फूल हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए।
वाह, क्या कमाल का रूपक है, कितने सरल और असरदार हैं ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक अध्याय है दंडवग, यानी दंड या सजा पर। ये अहिंसा के बारे में है शायद।
हाँ, ये अहिंसा का बहुत जोरदार संदेश देता है। कहता है कि जैसे हमें चोट लगने से डर लगता है, हमें दर्द होता है, हमें अपना जीवन प्यारा है,
बिल्कुल,
वैसे ही हर प्राणी को, हर जीव को अपना जीवन प्यारा है और सजा से, दंड से डर लगता है।
सही बात है।
तो बुद्ध कहते हैं खुद को दूसरों की जगह रखकर देखो और किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ, न खुद मारो न मारने का कारण बनो।
ये खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना, सहानुभूति, एम्पैथी, ये आज कितनी जरूरी चीज है।
बहुत ज्यादा। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है तणहावग, यानी तृष्णा या क्रेविंग पर।
तृष्णा, ये क्या है?
तृष्णा मतलब वो कभी ना बुझने वाली प्यास, और चाहिए और चाहिए।
अच्छा, इच्छा।
इच्छा से भी ज्यादा, ये एक बेचैनी है, एक अतृप्ति है, चाहे वो चीजों की प्यास हो या तारीफ की प्यास हो या बस दुनिया में बने रहने की प्यास हो, इसे एक ऐसी बेल कहा गया है जो हमें जन्म मरण के इस दुख भरे चक्कर में उलझाए रखती है।
बाप रे, बेल की तरह।
हाँ, और बुद्ध कहते हैं इस बेल को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी।
ये तृष्णा वाली बात तो आज की दुनिया पर ये जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है उस पे बिल्कुल फिट बैठती है।
हाँ बिल्कुल,
हर तरह से हमें यही संदेश मिलता है, और खरीदो और पाओ तभी खुश रहोगे, जबकि धम्मपद ठीक उल्टा कह रहा है।
एकदम उल्टा, कि असली खुशी इस प्यास को शांत करने में है, ना कि इसे और भड़काने में। हाँ, और आखिर में एक बहुत ही, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी अध्याय है, ब्राह्मण वग्ग।
ब्राह्मण वग्ग
जी,
इसमें क्या क्रांतिकारी है?
उस जमाने में क्या था, ब्राह्मण जन्म से माने जाते थे, सबसे ऊंची जाति।
हाँ, वर्ण व्यवस्था।
लेकिन बुद्ध ने ब्राह्मण शब्द का मतलब ही बदल दिया।
उन्होंने कहा सच्चा ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो।
तो फिर कौन?
सच्चा ब्राह्मण वो है जिसने अपने मन को साफ कर लिया है, जिसे ज्ञान मिल गया है, जो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, जिसने निर्वाण पा लिया है।
वाह,
ये पदवी कर्म से मिलती है, अंदरूनी क्वालिटी से मिलती है, जन्म से नहीं।
ये तो उस समय के सामाजिक ढांचे पे सीधा प्रहार था। कमाल है, इससे पता चलता है कि बुद्ध का जोर बाहरी पहचान पर नहीं बल्कि आंतरिक गुणों पर था।
बिल्कुल, यही उनका फोकस था। तो इन कुछ झलकियों से ये काफी साफ हो जाता है कि धम्मपद किन मुख्य बातों पर, किन थीम्स पर जोर देता है, अगर हम इन्हें समेटने की कोशिश करें।
हाँ जरूर, तो सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण थीम है मन की प्रधानता और कर्म का सिद्धांत।
मन की प्रधानता मतलब?
मतलब हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वैसा ही महसूस करोगे, और हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका नतीजा जरूर मिलता है। ये कोई ऊपर वाला सजा या इनाम नहीं दे रहा।
अच्छा,
ये बस एक नेचुरल लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट का नियम।
तो इसका सीधा मतलब है कि हम अपनी खुशी और दुख के लिए बहुत हद तक खुद जिम्मेदार हैं, हम विक्टिम नहीं हैं।
बिल्कुल, हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं, ये जिम्मेदारी का भाव देता है।
दूसरा थीम?
दूसरा, नैतिकता या अच्छा आचरण जो है वो बुनियाद है। सच बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना, ये सब सिर्फ मतलब अच्छे उपदेश नहीं है।
नहीं है,
ये मन की शांति और आध्यात्मिक तरक्की के लिए जरूरी शर्तें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट। इनके बिना मन शांत हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ना मुश्किल है।
अच्छा, तो नैतिकता सिर्फ समाज के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए भी जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे अहम, तृष्णा यानी क्रेविंग ही दुख की असली जड़ है।
हाँ, ये हमने भी बात की।
वो अतृप्त इच्छा, वो बेचैनी, कुछ पाने की या कुछ खोने के डर की, यही हमें लगातार दौड़ाती रहती है और दुखी रखती है। जब तक ये प्यास है तब तक सच्ची शांति, मतलब वो गहरी वाली शांति, नहीं मिल सकती।
चौथा थीम?
चौथा है सजगता या माइंडफुलनेस की शक्ति। हर पल अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे बस देखना, जैसे कोई साइंटिस्ट देखता है। ये अभ्यास हमें मन का गुलाम बनने से बचाता है, ये हमें अपने रिएक्शंस चुनने की आज़ादी देता है, नहीं तो हम बस रिएक्ट करते रहते हैं।
सही कहा, हम ऑटो पायलट पर चलते हैं अक्सर। पांचवा थीम?
और पांचवा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, आत्मनिर्भरता और खुद पर भरोसा।
हाँ, ये आपने पहले भी कहा था।
बुद्ध साफ कहते हैं तुम खुद ही अपने मालिक हो, तुम्हारी शरण तुम खुद हो, अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। रास्ता कोई दिखा सकता है, गुरु मदद कर सकता है, किताबें गाइड कर सकती हैं, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा।
सही।
मुक्ति कोई दूसरा तुम्हें थाली में परोस कर नहीं देगा, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, अपने मन पर खुद विजय पानी होगी।
ये सारे थीम्स कमाल के हैं और मुझे लगता है आज भी उतनी ही, शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं।
हाँ है ही। और धम्मपद की ताकत इसके छोटे छोटे धारदार सूत्रों में भी है, जिन्हें गाथा कहते हैं। कुछ कथन तो ऐसे हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं।
हाँ, कुछ कोट्स की बात करते हैं, जैसे वो पहला ही सूत्र जो पूरी किताब की नींव रखता है, मन सभी चीजों से आगे चलता है, मन ही मालिक है, सब कुछ मन से ही बना है। और फिर वो बैलगाड़ी वाला उदाहरण।
हाँ।
अगर कोई बुरे मन से बोलता या काम करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे चलता है जैसे गाड़ी का पहिया बैल के पीछे।
वर्स वन का भाव।
यस।
ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालता है हम पे,
अपने विचारों को देखने की, उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी।
बिल्कुल।
और वो वाला, इस दुनिया में दुश्मनी कभी दुश्मनी से खत्म नहीं होती।
बिना दुश्मनी के भाव यानी प्रेम या मैत्री से ही खत्म होती है, यही हमेशा से चला आ रहा नियम है।
वर्स 5 का भाव,
आज की दुनिया में जहाँ इतनी नफरत है, इतना बंटवारा है, ये लाइन एक रामबाण इलाज जैसी लगती है।
बिल्कुल, बदला लेने से बात और बिगड़ती है, माफी और समझ से ही शांति आ सकती है शायद।
हाँ, एक और जो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करता है, हजारों बेकार के शब्दों से वो एक काम का शब्द बेहतर है जिसे सुनकर शांति मिले।
ओहो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।
एग्जैक्टली, और इसी तरह मैदान में हजार लोगों पर जीत पाने वाले से बड़ा योद्धा वो है जिसने खुद पर जीत पा ली है।
वर्स 100-103 का भाव, आत्मविजय सबसे बड़ी विजय है। हम बाहरी दुनिया में कितना जीतने की कोशिश करते हैं, है ना, पर असली लड़ाई तो अपने अंदर के मन से है।
सही कहा, और आत्मनिर्भरता वाला संदेश फिर से देखिए, तुम ही अपने मालिक हो, तुम ही अपनी मंजिल हो, इसलिए खुद को वैसे ही काबू में रखो जैसे एक अच्छा घोड़ा व्यापारी अपने सबसे अच्छे घोड़े को करता है।
बस 380 का भाव, लगाम अपने हाथ में रखो।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ताकत और हमारी मुक्ति का स्रोत हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं ढूंढना है।
वाकई ये सूत्र छोटे हैं पर इनमें गहरा ज्ञान छिपा है। अब असली सवाल, और शायद सबसे मुश्किल सवाल ये उठता है कि इन 2500 साल पुरानी बातों को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल कैसे बनाएं?
ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, इसका सबसे सीधा एप्लीकेशन तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल रेगुलेशन में है।
अच्छा, कैसे?
ये जो माइंडफुलनेस का अभ्यास है, बस अपनी सांस पर ध्यान देना या अपने विचारों को बिना जज किए देखना, ये हमें चिंता, तनाव, गुस्से जैसी मुश्किल भावनाओं से डील करने में मदद कर सकता है।
जैसे?
जैसे मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर बस उस गुस्से की फीलिंग को शरीर में महसूस करना, उसे देखना कि वो कैसा है, अक्सर इससे उसका जोर अपने आप कम हो जाता है।
अच्छा, रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना।
हाँ, और वो नफरत को प्यार से जीतो वाला सिद्धांत ये रिश्तों में कमाल कर सकता है।
हाँ, ये तो है, बहस या झगड़े में अगर हम एक पल रुककर सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करें, थोड़ा नरम रवैया अपनाएं, तो शायद बात ज्यादा आसानी से सुलझ जाए बजाय कि तू-तू मैं-मैं करने के।
बिल्कुल। दूसरा, एथिकल डिसीजन मेकिंग में ये जो कर्म का सिद्धांत है ना, ये हमें एक तरह का नैतिक दिशा सूचक देता है,
कंपस। कैसे?
कोई भी काम करने से पहले, खासकर अगर वो दूसरों को प्रभावित करने वाला है, तो खुद से पूछें, मेरी नीयत क्या है, इसके पीछे का इरादा क्या है, क्या मैं ये लालच, गुस्से या जलन में कर रहा हूँ, या इसके पीछे ईमानदारी, उदारता और भलाई का इरादा है। ये आदत हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही रास्ते पर रख सकती है, इंटीग्रिटी बनाए रखने में मदद करती है।
सही है। तीसरा?
तीसरा, मुश्किलों का सामना करने में रेजिलियंस बनाने में, मतलब लचीलापन।
अच्छा, वो कैसे?
धम्मपद बार बार याद दिलाता है कि सब कुछ बदलता रहता है, अनित्य है।
अनित्यता?
हाँ, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, न सुख न दुख। ये बात गहराई से समझने से हमें नुकसान, असफलता या जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के दर्द को सहने की ताकत मिलती है। ये समझ कि ये दौर भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें टूटने से बचाती है, हमें ज्यादा संभाव से रहना सिखाती है।
ये बहुत पावरफुल है। चौथा एप्लीकेशन।
चौथा, आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी, कंज्यूमरिज्म से हटकर मीनिंग खोजना।
हाँ, इसकी बात हमने की थी।
धम्मपद सिखाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अंदर के गुणों में है, जैसे संतोष, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, और हमेशा और ज्यादा की जो अंतहीन दौड़ है उसमें न लगे रहना। ये हमें सादगी में खुशी ढूंढने में मदद कर सकता है, और ये जो विज्ञापनों की दुनिया ने जाल बनाया है उससे निकलने में भी।
बिल्कुल।
और पांचवा?
पांचवा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, झगड़ों को सुलझाने में। वो जो सूत्र है, दुश्मनी से दुश्मनी हत नहीं होती।
हाँ,
ये बात घर के छोटी झगड़ों से लेकर देशों की बड़ी लड़ाइयों तक हर लेवल पर लागू होती है। बदला लेने की भावना, प्रतिशोध,
हाँ,
ये चक्र को और बढ़ाता है।
सही।
इसकी जगह अगर हम माफी, समझ और बातचीत को मौका दें, तो शायद हम नफरत के इस अंतहीन चक्र को तोड़ पाएं।
तो देखा जाए तो धम्मपद कोई जादू की छड़ी नहीं देता कि घुमाई और सब ठीक हो गया।
नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमें अपने मन को समझने और उसे साधने के, उसे ट्रेन करने के औजार जरूर देता है। टूल्स देता है।
बिल्कुल सही।
और ये टूल्स बहुत कारगर हैं अगर हम उनका अभ्यास करें।
तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, उसे समेटें, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है, जो सबसे मूल्यवान सबक है, वो ये है कि खुशी और दुख की चाबी असल में हमारे ही हाथ में है।
पूरी तरह से।
हम बाहरी हालात को, लोगों को, किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन असली खेल तो हमारे मन के अंदर चल रहा है।
और अच्छी बात यह है कि ये हमारे नियंत्रण में है। हम अपने मन को बदल सकते हैं, उसे ट्रेन कर सकते हैं।
हाँ।
शांति कोई दूर का सपना नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो मरने के बाद मिलेगी। ये एक स्किल है, एक क्षमता है, जिसे हम अभी यहीं इसी जीवन में सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए जो सबसे खास बात उभर कर आती है वो ये है कि धम्मपद आध्यात्मिकता को सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे मन का एक व्यवहारिक विज्ञान बना देता है।
अच्छा।
साइकोलॉजी जैसा।
हाँ।
ये मानव स्थिति का एक स्पष्ट निदान करता है। प्रॉब्लम क्या है? दुख। उसका कारण क्या है? तृष्णा और अज्ञान। फिर ये यकीन दिलाता है कि इलाज मुमकिन है, दुख समाप्त हो सकता है, निर्वाण संभव है। और फिर उसका एक स्पष्ट नुस्खा भी देता है, वो 8 अंगों वाला मार्ग, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं।
राइट। सही समझ, सही इरादा, सही बोली वगैरह।
हाँ, सही कर्म, सही जीविका, सही कोशिश, सही सजगता और सही ध्यान। ये एक पूरा साइंटिफिक पैकेज है मन को बदलने का।
ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो ये हमें जबरदस्त पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है।
हाँ।
मतलब अपनी हालत के लिए हम किसी और पर उंगली नहीं उठा सकते।
सही।
लेकिन साथ ही ये हमें ताकत भी देता है कि हम खुद को बदल सकते हैं। ये एक तरह से टाइमलेस साइकोलॉजी की किताब है, जो सिखाती है कि मन को साधकर हम ऐसी अंदरूनी शांति पा सकते हैं जिसे बाहर की कोई आंधी, कोई तूफान हिला ना सके।
बिल्कुल, एक अटूट शांति। और शायद एक सवाल जो हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं वो ये, क्या हो अगर हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को, चुनौतियों को सिर्फ बाहरी परेशानियां मानने के बजाय उन्हें अपने मन को और बेहतर समझने और ट्रेन करने का एक अवसर समझें? ये तो पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हाँ, अगर हर चुनौती हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका दे, तो शायद जिंदगी को देखने का, उसे जीने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाए।
बहुत गहरा विचार है ये, इस पर सोचना होगा।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।